राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन इंग्लिश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमन भागवतम की जय गौर प्रेमानंदे
सब लोग बोलिए
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 66 अध्याय का नाम है पौंडरक छद में वासुदेव। इसके पहले हमने सुना था बलराम जी वृंदावन में गए और उनका किस प्रकार से गोपियों के साथ संवाद हुआ। बलराम जी ब्रजवासियों से मिले तो द्वारका में बलराम जी नहीं है तो अब द्वारका में क्या घटना हुई है यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन जब बलराम नंदग्राम में गए हुए थे तो करूस के राजा ने मूर्खता पूर्वक ये सोचकर अपना दूत भगवान कृष्ण के पास भेजा कि मैं भगवान वासुदेव हूं। अपने को भगवान समझ करके उसने दूत भेजा द्वारका में कृष्ण के पास। नंद ब्रजम गते रामे करूषाधिपतिर नृप वासुदेवम वासुदेवो हम इत्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्राहिणो। तात्पर्य लिखा है क्योंकि बलराम जी नंदग्राम में गए थे इसलिए पौंडरक ने मूर्खता पूर्वक सोचा कि अब तो कृष्ण अकेले होंगे अतः उन्हें ललकारना आसान होगा। फलता उसने भगवान के पास अपना संदेश भेजने का दुस्साहस किया। जिसने सुखदेव को समय कहते इति अज्ञो बहुत अज्ञानी है मूर्ख है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं नराधम मूढ़ा माया हित ज्ञान तो ऐसे जो है ना ये लोग हैं। तो जो मूर्ख लोग थे तो वो चापलूसी करते थे पौंडरक की चमचागिरी। तो उसके जो चमचे थे पौंडरक के वो कहते थे उससे कि तुम भगवान वासुदेव हो और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पृथ्वी में अवतरित हुए हो। तो उसने सोच लिया कि हाँ मैं सचमुच ऐसा ही हूँ। और जो चमचे थे वो क्यों चमचागिरी करते थे उसकी, क्योंकि उनको तो कुछ धन चाहिए, सुविधा चाहिए, राजा की चमचागिरी करते हैं, है ना। तो राजा साहब ने अपने को भगवान समझ लिया, इस तरह वो अपने आप को भगवान मान बैठा लोगों की चापलूसी से। तम वासुदेव भगवान अवतीर्णो जगतपति इति प्रस्तोभितो बालैर मैन आत्मानम अच्युतम। हाँ, और इतनी मूर्खता बढ़ गई, इतना ज्यादा विश्वास कर लिया उसने कि कृष्ण के पास संदेश भेज दिया क्या कि मैं असली भगवान हूँ और तुम भगवान का नाम भगवान के चिन्ह त्याग दो। अतः उस मंद बुद्धि पौंडक ने अव्यक्त भगवान कृष्ण के पास द्वारका में एक दूत भेजा। पौंडरक उस मूर्ख बालक की तरह आचरण कर रहा था जैसे अन्य बालक राजा मान लेते हैं। तो कभी ड्रामा में ऐसा होता है ना कि कई बच्चे मिलकर के किसी को राजा बना दें, तो उसी प्रकार से मूर्खों ने उसको जो ना भगवान बता दिया, अपने को भगवान समझने लगा वो और द्वारका में उसने अपना संदेश भेज दिया। दूतम च प्राहिणोन मंदाम कृष्णाया व्यक्ति वर्तमने द्वारकायाम यथा बालो निपो बाले कृतो बुधः। यहाँ कृष्ण को कहा गया अव्यक्त वर्तमने, अव्यक्त वर्तम का मतलब है जिनका मार्ग बड़ा रहस्यपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण मनुष्य की लीला करते हैं है? तो कृष्ण इस प्रकार से आचरण करते हैं जैसे मनुष्य हो, जो असली भगवान है। असली भगवान मनुष्य का आचरण करते हैं, तो जो नकली भगवान है वो अपने को भगवान समझ रहे हैं, असली भगवान समझ रहे हैं। तात्पर्य लिखा है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार पौंडरक के कृष्ण के पास दूत भेजने का सुखदेव गोस्वामी द्वारा दोबारा उल्लेख किए जाने का कारण यह है कि महामुनि स्वयं पौंडरक की निपट मूर्खता पर चकित है। दो बार कहा सुखदेव गोस्वामी ने, पहले श्लोक में कहा था दूतम कृष्णाय प्राहिणो और यहाँ फिर कहा दूतम च प्राहिणोन मंदा, उसमें कहा था अज्ञा, यहाँ मंद कहा है ना, तो मंद बुद्धि। द्वारका पहुंचने पर दूत ने कमल नेत्र कृष्ण को उनकी राजसभा में उपस्थित पाया। उसने राजा का संदेश उन सर्वशक्तिमान प्रभु को कह सुनाया। दूतस्तु द्वारका मेत्यं सभायां आसितं प्रभुं कृष्णं कमले पत्राक्षं राजसंदेशं अम्ब्रवीन। अब दूत क्या कह रहा है, उसका तो काम है राजा के शब्द दोहराना, तो वो क्या कहता है कि महाराज पौंडरक ने आपको संदेश भेजा है क्या, मैं ही एकमात्र भगवान वासुदेव हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मैं ही इस जगत में जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित हुआ हूँ, अतः तुम अपना झूठा नाम छोड़ दो अपना वासुदेव नाम छोड़ दो। वासुदेव अवतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानाम अनुकंपार्थम तुम तो मिथ्याभिधाम त्यज। अच्छा और क्या, हे यादव तुम मेरे चिन्हों को छोड़ दो, मेरे चिन्ह तुमने धारण कर लिए जिन्हें इस समय तुम मूर्खतावश धारण करते हो, देखा और आकर मेरी शरण लो, कहता है यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझसे युद्ध करना होगा। यानी तो स्मन चिन्हानी मौढ़िया बेभर से सात्वत त्यक्त्वा हि माम त्वं शरणम नो चेद्य हि ममाहवम। आप सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि जब अज्ञानी पौंडरक की इस डींग को राजा उग्रसेन ने सुना और सभा के अन्य सदस्यों ने सुना तो वे जोर जोर से हंसने लगे। कथनम तदुपाकरणे पौंडरकस्याल्प मेधसः उग्रसेनादयः सभ्या उच्च कैर जहासो सदा। हाँ, तो ये भी एक अच्छा जो है आनंद है हंसी का, एक किसी की मूर्खता। तो जैसे गीता में भगवान ने कहा है ना, यस्मान नोदृष्टे लोको लोकान नोदृष्टे तया, उद्विग्न नहीं हुए ना तो भगवान उद्विग्न हुए ना सभा के लोग उद्विग्न हुए, है ना, नहीं तो उद्विग्न हो जाते है ना। तो भक्ति का ये प्रभाव है कि जहाँ उद्वेग की बात होती है वहां पर भी भक्त हंसते हैं, ये देख करके किसी व्यक्ति की मूर्खता को। तो उन्होंने हंसी का आनंद लिया, इसमें उद्वेग से प्रभावित ना होकर वे सभी लोग हंसे और खूब हंसे। श्रील प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को कई बार हंसाते थे तथा स्वयं भी हंसते थे। इसी को कहते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भगवान को ना तो कोई भय है, ना क्रोध है, ना द्वेष है, वे पूर्ण प्रसन्न हैं। सभा की हंसी मजाक का आनंद लेने के बाद भगवान ने दूत से कहा कि अपने स्वामी को तुम सूचित करो हमारा संदेश क्या है। तो जब खूब हंसी हो गई और हंसी का जो शोरगुल है वो बंद हो गया, तब भगवान ने कहा जैसे सब लोग सुने। तो भगवान जो है ऐसा कार्य नहीं करते हैं कि जिसमें कि किसी को पता ना चले। तो भगवान जो बोल रहे हैं तो सब लोग सुन रहे हैं, इसलिए पहले हंसने दिया सबको। जब खूब हंस लिया सबने तो फिर सब चुप हो गए। तो भगवान ने कहा कि इसको बताना। क्या कहा? रे मूर्ख, मैं निस्संदेह उन चिन्हों को त्याग दूंगा जिनकी वजह से मैं तुम इस तरह डींग मार रहे हो। मतलब मैं तुम्हारे ऊपर ही त्यागूंगा उन चिन्हों को ना? तुम कह रहे हो कि तुम्हारे चिन्ह हैं, तो तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ूंगा उन चिन्हों को। तुम डींग मार रहे हो कि तुम्हारे चिन्ह है ये, तो तुम्हारे ऊपर ही छोड़ूंगा मैं। वाच दूतम भगवान परिहास कथा मनो उत्रक्षे मूढ़ चिन्हानी ये स्वमेव विकथसे। तात्पर्य में लिखा है यहाँ भगवान उत्तर देते हैं, उत्तरक्षे मूल चिन्हानी, हाँ मूर्ख, जब हम युद्ध भूमि में मिलेंगे तो मैं इन हथियारों को छोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है, जब राजा उग्रसेन समेत राजसभा के लोगों ने पौंड्रक द्वारा भेजा गया संदेश सुना तो बड़ी देर तक वे जोरों से हंसते रहे। सभा के सारे सदस्यों के अट्टहास का मजा लेने के बाद कृष्ण ने दूत को उत्तर दिया, हे पौंड्रक के दूत, तुम अपने स्वामी के पास मेरा संदेश ले जाओ, वो निपट धूर्त है, मैं उसे धूर्त ही कहता हूँ, मैं उसके आदेशों का पालन करने से इनकार करता हूँ। आगे भगवान कहते हैं, रे मूर्ख, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा मुख गीधों चीलों और बट पक्षियों से ढका रहेगा, तो तुम कुत्तों का आश्रय स्थल बनोगे। मुखम तदपि धायाग्य कंक गृद्र वटैर्वृत शैष्य से हतस्तत्र भविता शरणम सुनाम। तो वो भगवान की शरण नहीं ले रहा है तो किन की शरण लेगा? कुत्तों की शरण लेगा। कुत्ते तो कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लेता है स्वान की शरण लेता है ना। अंग्रेजी बोलते हैं गॉड, अगर गॉड की शरण नहीं लोगे तो डॉग की शरण लोगे। तो भगवान ने कहा कि तुम कुत्तों की शरण लोगे, कुत्ते तुमको शरण देंगे, कुत्ते आएंगे तुम्हारे पास जब तुम गिरोगे, और गीधों चीलों पक्षियों के द्वारा तुम्हारा मुंह ढका रहेगा उस समय। तात्पर्य में लिखा है पौंड्रक ने मूर्खतावश भगवान को अपने शरण में आने के लिए कहा था, किंतु यहां भगवान उसे कहते हैं तुम मेरी शरण नहीं हो, अब तो तुम कुत्तों की शरण बनोगे जब ये तुम्हारे शव को प्रसन्नता पूर्वक खाएंगे। श्रील प्रभुपाद ने इस दृश्य का विस्तृत वर्णन किया है। भगवान कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, जब मैं तुम्हारा विनाश करूंगा रे मूर्ख राजा, तब तुम्हें शर्म से अपना मुख छिपाना पड़ेगा। और जब मेरे चक्र से तुम्हारा सिर तुम्हारे शरीर से कटकर अलग होगा तो मांस भक्षी पक्षी यथा चील गिद्ध और बाज तुम्हें घेर लेंगे। उस समय तुम मेरी शरण बनने के बजाय जो तुमने मांगी है इन अधम पक्षियों की कृपा के पात्र हो गए। उस समय तुम्हारा शरीर कुत्तों के सामने फेंका जाएगा जैसे वे बड़े ही हर्ष से खाएंगे। मतलब कुत्ते तुम्हारे शरण लेंगे या तुम कुत्तों के शरण लोगे, जो भी हो। जब भगवान इस तरह बोल चुके तो उनके अपमान पूर्ण उत्तर को उस दूत ने अपने स्वामी के पास जाकर पूरी तरह कह सुनाया। तब भगवान कृष्ण अपने रथ पर सवार हुए और काशी के निकट गए। इति दूत तमाक्षेपम स्वामी ने सर्वमाहर कृष्णोपि रथमास्थाय काशीमपि जगामह। अब देखिए वो राजा था करूस देश का और भगवान गए काशी में। क्यों? क्योंकि उस समय वो काशी में था, है ना। तो भगवान को पूछने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान को सब पता है कि कौन कहाँ पर है। भगवान को कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता है। तो जब द्वारका से चले तो काशी की ओर गए क्योंकि उसको काशी में ही मिलना था। तात्पर्य लिखा है भगवान कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया है। वह दूत कृष्ण का संदेश अपने स्वामी पौंडरक के पास लाया जिसने इन सारे अपमान को धैर्य पूर्वक सुना। बिना विलंब किए श्री कृष्ण तुरंत ही धूर्त पौंडरक को दंड देने के लिए अपने रथ पर सवार होकर चल दिए। चूंकि उस समय पौंडरक अपने मित्र काशीराज के पास था इसलिए कृष्ण ने काशी नगरी को घेर लिया। भगवान कृष्ण द्वारा युद्ध की तैयारी देखकर बलशाली योद्धा पौंडरक तुरंत ही दो अक्षौहिणी सेना के साथ नगर के बाहर निकल आया। पौंडरकोपि तदुद्योगम उपलभ्य महारथः अक्षौहिणीभ्याम संयुक्तो निश्चक्रामे परांद्रुतम्। दो अक्षौहिणी जानते कितना होता है? 21,870 रथ होते हैं और इतने ही हाथी होते हैं। इससे तीन गुने घुड़सवार होते हैं और इससे पांच गुने पैदल होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के सब सैनिकों की संख्या, मतलब हाथी घुड़सवार और रथ और पैदल मिलाकर के 218,700 एक अक्षौहिणी में होता है। तो दो अक्षौहिणी का मतलब 400,000 से भी ऊपर सैनिक हैं। अब पौंडरक का मित्र काशीराज उसके पीछे पीछे आया और वो तीन अक्षौहिणी सेना के साथ रक्षा कर रहा था। भगवान कृष्ण ने देखा कि पौंडरक भगवान के ही चिन्ह शंख चक्र तलवार गदा और बनावटी नकली सारक धनुष नकली श्रीवत्स का चिन्ह धारण किया था, नकली कौस्तुभ मणि धारण किया था और बनमाला भी नकली धारण किया था और पीला वस्त्र पीतांबर धारण किया था। गरुड़ का चिन्ह भी बना लिया अपने रथ में, भगवान के रथ में गरुड़ का चिन्ह है और अमूल्य मुकुट चमचमाते मकराकृति वाले कुंडल धारण किया था जिसे भगवान का है वर्णन है। और भगवान कहता है मैं असली हूँ तुम नकली हो। तस्य काशी पतिर मित्रम पार्श्वग्राहोन्वयान अक्षौहिणी भिस्तिस्त्रभिर् अपश्यन् पौंडरकम् हरिः संखार्यसि गदासार्गिम् श्रीवत्साद्युपलक्षितम् विभ्राणम् कौस्तुभमणिम् वनमाला विभूषितम् कौशेयवाससि पीते वसानम् गरुड़ध्वजम् अमूल्य मौल्याभरणम् स्फुरन् मकर कुंडलम्। तात्पर्य लिखा है श्रील प्रभुपाद ने टीका की है जब दोनों राजा कृष्ण का सामना करने भगवान कृष्ण के समक्ष आए तो कृष्ण पहली बार पौंडरक को आमने सामने देखा भगवान के सामने ही जो है एक नकलची आ गया अपने को असली कह रहा है। कितना झूठ, इससे भी ज्यादा कि कोई झूठ हो सकता है? झूठा आदमी कहता है कि मैं असली हूं, भगवान के सामने कह रहा है। जब भगवान हरि ने देखा कि राजा ने उन्हीं जैसा अपना बेस बना रखा है जैसे मंच पर अभिनेता करता है तो बहुत हंसे, देख करके उनको बहुत हंसी आई। दृष्ट्वा तमात्मनस्तुल्यम् बेसम कृत्रिम आसितम् यथानतम रंगगतम विजिहास वृषम हरि। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुल मिलाकर पौंडर की वेशभूषा और पहनावा बनावटी थी। कोई भी समझ सकता था कि वो बनावटी वेशभूषा में मंच पर वासुदेव का अभिनय कर रहा है। जब श्री कृष्ण ने पौंडर को अपनी भंगिमा और वेशभूषा का अनुकरण किए देखा तो वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए, बहुत हंसे उसको देख करके। आगे भगवान हरि के शत्रुओं ने भगवान पर क्या किया? आक्रमण। बहुत से त्रिशूल, गदाएं और शक्तियां, दृष्टियां, प्रास, तोमर, तलवार, कुल्हाड़ियां और बाण ये सब चलाए भगवान के ऊपर, एकदम से सब प्रहार करते हैं। शूलैर गदा भी परिघय शक्तिरिष्टे प्रास तोमर असभी पट सैर बाणे प्राहरण नरयो हरिम। लेकिन भगवान अकेले हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? कितने शत्रु हैं, अनेक शत्रु हैं, और भगवान अकेले हैं तो भी कोई अंतर थोड़ी पड़ता है भगवान के लिए। भगवान ने क्या किया? दोनों सेनाओं पर, पौंडरक की सेना और काशीराज की सेना, पौंडरक की दो अक्षौणी सेना और काशीराज की तीन अक्षौणी सेना, दोनों पर भीषण प्रहार किए। भगवान ने अपनी गदा, तलवार, सुदर्शन चक्र और बाणों से शत्रुओं को ऐसे पीड़ित किया जैसे प्रलय काल में क्या होता है? अग्नि, प्रलय काल की अग्नि विनाशकारी होती है, इस प्रकार से विनाश किया उस सेना का। कृष्ण स्तुतन पौंडक काशीराजयोर बलम गज चंदन वाजिपति गदासि चक्रेशु भिरादयन भृशम यथा योगान्ते हतभुं पृथं प्रजा। तात्पर्य में लिखा है, श्रील प्रभुपाद ने इस तरह टीका की है, राजा पौंडरक के पक्ष के सैनिक कृष्ण पर अपने हथियारों की वर्षा करने लगे। हथियारों में क्या था? त्रिशूल, गदा, खंभे, भाले, तलवारें, खंजर और बाण थे जो लहरों की तरह उड़ते आ रहे थे और कृष्ण उनका सामना कर रहे थे। उन्होंने न केवल इन हथियारों को नष्ट कर दिया, अभी तो पौंडरक के सैनिकों और सहायकों को भी नष्ट कर दिया। जिस तरह इस ब्रह्मांड के प्रलय के समय विनाश की अग्नि हर वस्तु को भस्म कर देती है, विपक्षी दल के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सिपाही कृष्ण के हथियारों से तितर बितर हो गए। ये सिद्धांत निश्चित है, जो भगवान का विनाश करना चाहता है उसका विनाश होता है, जो भगवान की रक्षा करना चाहता है उसकी रक्षा होती है। जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण की रक्षा करना चाहते हैं। गर्ग जी ने कहा था, गोपायस समाहिता, बड़ी सावधानी से इस बालक की रक्षा करो। और ये कहा कि जो इस बालक की रक्षा करेंगे उनको किसी प्रकार का फिर भय नहीं होगा, है ना। और जो उस बालक का नाश करना चाहते हैं उनका अपने आप नाश होता है। भगवान के चक्र द्वारा खंड खंड किए गए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, खच्चर, ऊंट, इनसे पटा हुआ युद्ध क्षेत्र ऐसे चमक रहा था मानो भूतपति का भयावना अखाड़ा हो। भूतों के पति मतलब इस मसान में वो करते हैं ना, खेल करते हैं ऐसा। आयोधनम तंद्रथ है बाजी कुंजर द्विपद खरोष्ट्र अरिणाम खंडित बभोचितम मोदे वहम मनस्विनाम आक्रीडनम भूतपते रिबोल बणम। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी की टीका है, यद्यपि विध्वंस किया हुआ युद्ध क्षेत्र संसार के प्रलय के समय शिव जी के नृत्य स्थल जैसा लग रहा था, किंतु कृष्ण के पक्ष की योद्धा इस दृश्य को देखकर अत्यंत प्रोत्साहित थे और वे अधिक शक्ति से युद्ध कर रहे थे। भूतपति का मतलब शंकर जी हैं। प्रलय काल के समय शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं तो विनाश होता है, तो ऐसा लग रहा था जैसे शंकर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं इस समय। अब भगवान ने पौंड्रक से कहा, क्योंकि तो भगवान को जवाब तो देना है ना, कोई व्यक्ति अगर ऐसे काम करता है तो उसको भी तो समझ में आना चाहिए कि वो कितना गलत कर रहा है। इसलिए मारने के पहले भगवान उसको समझा रहे हैं कि पहले समझ तू कि तू क्या सोच रहा है, अपने को तू क्या सोच रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं, रे पौंड्रक, तूने अपने दूत के माध्यम से जिन चिन्हों के लिए कहलाया था कि मैं छोड़ दूं, तो मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं उन चिन्हों को तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। अथा है पौंड्रकम शौरिर भो भो पौंड्रकम यद भवान दूते वाक्य न मामा है तान्यस्त्राण्युत्र जामी ते। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की टीका है, इस समय भगवान कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, पौंड्रक तुमने मुझसे भगवान विष्णु के चिन्हों को विशेष किया मेरे चक्र को त्यागने के लिए अनुरोध किया था, अब मैं इसे तुझ पर छोड़ रहा हूँ। सावधान, तू झूठे ही मेरा अनुकरण करते हुए अपने को वासुदेव घोषित कर रहा है, अतः तुझसे बढ़कर मूर्ख कोई नहीं है। कृष्ण के इस कथन से स्पष्ट है कि जो भी धूर्त अपने को ईश्वर घोषित करता है वो मानव समाज में सबसे बड़ा मूर्ख है, सबसे बड़ा मूर्ख है। अब भगवान क्या कहते हैं, रे मूर्ख, अब मैं तुझसे अपना नाम छुड़वा कर रहूंगा। तूने मेरा नाम ले लिया है तो मैं अपना नाम छीनता हूं तुझसे। शरीर छीन लूंगा तो नाम भी चला जाएगा, शरीर के साथ सब छीन जाएगा। तूने झूठे ही मेरा नाम धारण कर रखा है, मैं अवश्य ही तेरी शरण ग्रहण करूंगा यदि मैं तुझसे युद्ध नहीं करूं। अगर मैं तुझसे युद्ध ना करूं तो तेरी शरण जरूर ग्रहण करूंगा मैं। त्याज से भी धानम में यज्ञ मृषाधृतम प्रजामि शरणम तेद यदि नेच्छामि संयुगम। तात्पर्य में प्रभुपाद की टीका है, हे पौंड्रक, अब मैं तुम्हें ये झूठा प्रतिनिधित्व त्यागने के लिए बाध्य कर दूंगा। तूने चाहा है कि मैं तेरी शरण लूं, अब तेरी बारी है, अब हम लड़ेंगे। यदि मैं हारा तो तेरी शरण में जरूर आऊंगा मैं। पौंड्रक को इस प्रकार चढ़ा करके भगवान कृष्ण ने अपने तेज बाणों से उसका रथ विनष्ट कर दिया। अभी एकदम से नहीं मारा, पहले उसके रथ को नष्ट किया, तोड़ा, तो दिखाना चाहते ना, तो इसलिए भगवान जो है उसके रथ को नष्ट करते अपने बाणों से। फिर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर उसी तरह काट लिया जैसे इंद्र अपने वज्र से पर्वत की चोटी को काटते हैं। इति चित्वा सतैर बाणैर विरथे कृत्य पौंड्रकम् शिरोवृश्चन्द्रथांगेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरे। भगवान कृष्ण ने अपने बाणों से काशीराज के सिर को उसके शरीर से उसी तरह काट कर उसे काशी नगरी में जाकर गिराया, काशी नगरी में गिराया मानो वायु द्वारा फेंका गया कमल का फूल हो। तथा काशी पते कायां क्षिर उत्कृत्य पत्र भी न्यपातयन काशीपुर्याम पद्म कोशम्यवान लहां। भगवान ने क्या किया था, पहले पौंड्रक की पूरी सेना और काशीराज की पूरी सेना समाप्त कर दी। प्रलय काल की अग्नि में कोई नहीं बचता है, तो कोई सैनिक नहीं बचा, सब समाप्त कर दिए। अब केवल दो बचे, एक काशीराज था, एक पौंड्रक था। तो एक का सिर तो सिरदर्शन चक्र से काटा और दूसरे का सिर अपने बाण से काटा। और बाण जो है ना काशीराज के सिर को काट करके कहाँ गिराता है, काशी नगरी में गिराता है, उसके महल में ही गिराता है। ठीक, महल में गिराया। अब इसका कारण क्या है कि उसके महल में गिराया? तात्पर्य में लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया है कि कृष्ण ने काशीराज के सिर को शहर में क्यों फेंका। काशीराज ने युद्ध में जाते समय नागरिकों को वचन दिया था, हे काशीवासियों, आज मैं शत्रु का सिर काटकर नगर में लाऊंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं मानना। राजा की पापी रानियों ने भी अपनी दासियों से डींग मारते हुए कहा था। वे रानियां भी पापनी थी, अपनी दासियों से कहती थी, आज हमारे स्वामी द्वारका के प्रभु का सिर अवश्य लाएंगे। इसीलिए भगवान ने काशी निवासियों को चकित करने के लिए राजा का सिर नगर में फेंक दिया। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार होता है जैसा कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सोचता है ना। तो भगवान का सिर काट करके लाना था तो उसका सिर कट के आ गया वहीं पर। जैसे कि सूर्य के ऊपर धूल फेंका कोई व्यक्ति तो क्या होता है, धूल अपने ही आंखों में आती है कि नहीं। तो उसी प्रकार सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता है तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ता है। इस तरह ईर्ष्यालु पौंड्रक और उसके मित्र का वध करने के बाद भगवान कृष्ण द्वारका लौट गए। जो ही वे नगर में घुसे, स्वर्ग के सिद्धों ने उनकी अमर अमृतमयी महिमा का गान किया। एवं मत्सरिणम हत्वा पौंड्रकम सशखम हरिहे द्वारकामाविशन सिद्धैर गीयमान कथामृतः। सिद्ध लोग जो है भगवान की कथा अमृत का गान करते हैं। सिद्ध माम पेते पुनर्जन्म दुखाले मसासुदम नाप्रमति महात्माना संसिद्धिम परमाम गतम। तो जीवन को जो ना कोई व्यक्ति अगर सिद्ध करना चाहता है, सफल करना चाहता है ना, तो क्या करे, भगवान की कथा अमृत का गान करे, है ना। तो सिद्ध लोग हैं वो भगवान की कथा अमृत का गान कर रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, पौंड्रक का ऑपरेशन किया था भगवान ने। उसका ऑपरेशन किया था, निरंतर भगवान का ध्यान करते रहने से पौंड्रक ने अपने सारे भौतिक बंधनों को ध्वंस कर दिया था। हे राजन, निस्संदेह भगवान कृष्ण के स्वरूप का अनुकरण करके अंततो गत्वा कृष्ण भावना भावित हो गया। सनित्यम भगवत ध्यान प्रंध्वस्ताखिल बंधन विभ्राणश्च हरे राजन स्वरूपम तन्मयो भवन। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है भृंगी कीड़ा का, है ना। तो जो भृंगी होता है वो किसी भी कीड़े को जो है जिंदा पकड़ करके दीवार में चुन देता है, उसको रख करके और चारों तरफ से मिट्टी से उसको मतलब बंद कर देता है। गीली मिट्टी उसके पास रखी रहती है तैयार, तो जिंदा कीड़े को ला करके वो जो है उसको उसमें डाल करके और जिंदा चुन देता है दीवार के अंदर। ऐसे वो करता रहता है और वो छेद बना लेता है, बिल्कुल थोड़ा सा उसमें रह जाता है, जब जिसमें कीड़ा भरना है थोड़ा सा छेद रह जाता है तो वो लाता है कोई किसी कीड़े को उसमें डाल देगा, फिर गीली मिट्टी से चुन देगा। तो ऐसे वो करता है। तो ये कहा जाता है कि 7 दिन में जो है ना वो जो कीड़ा है वो शरीर को छोड़ देता है, लेकिन फिर उसी के अंदर जो है ना वो उसी का शरीर प्राप्त कर लेता है, भृंगी का शरीर प्राप्त कर लेता है और छेद करके उसमें छेद करके निकल जाता है, उड़ जाता है 7 दिन में, है ना। तो एक ऐसी भी विधि है, चिंतन करके वो उसको दूसरा शरीर प्राप्त हो गया वहीं के वहीं, बिना माता पिता के। कोई भी कीड़ा हो, किसी भी प्रकार का कीड़ा हो, वो उसको जो ना लाता है तो वो भय के कारण चिंतन करता है उसका, भृंगी का, और भृंगी जैसा बन जाता है उसका शरीर और वो जो है उड़ जाता है, उसी शरीर से ही उसको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इतना मतलब तीव्र चिंतन करता है वो भय के कारण, है ना। तो ये जो है ना यहाँ पर वही सिद्धांत लागू हो रहा है। भगवान का तीव्र चिंतन करता है कि मैं वासुदेव हूँ, वासुदेव हूँ, सारूप में मुक्ति प्राप्त हो गई, कृष्ण भावना भावित हो गया, मतलब उसको ज्ञान हो गया कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। तो जिनको सारूप में मुक्ति प्राप्त होती है तो वो भगवान जैसे लगते हैं, लेकिन अगर कोई उनको भगवान समझ करके अगर प्रणाम स्तुति नमस्कार करता है तो वो तुरंत मना करते हैं, नहीं 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 ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं भगवान नहीं हूं। जबकि वो बिल्कुल मतलब भगवान जैसे उनका पूरा शरीर होता है, वस्त्र हैं और हाथ हैं और चारों चिन्ह हैं, सब हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मना करते हैं। और यहां पर जिनके पास भगवान के चिन्ह ही नहीं है, ये अपने को असली भगवान कहते हैं, अपनी पूजा कराते हैं, है ना, तो ये मूर्ख है, अज्ञान है। सनित्यं भगवत ध्यान प्रध्वस्ताखिल बंधन बिभ्राणश्च हरे राजन स्वरूपं तन्मयो भवन। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद की टीका है, जहां तक पौंडरक का संबंध था वो भगवान वासुदेव की भांति मिथ्या ही वेश धारण करके किसी न किसी प्रकार से उनका चिंतन करता रहता था, इसीलिए पौंडरक को पांच प्रकार की मुक्ति में से सारूप में मुक्ति प्राप्त हुई। इस तरह उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ, जहां अपने चारों हाथों में चार चिन्ह धारण करने वाले विष्णु के समान भक्तगण भी शरीर धारण किए रहते हैं। वास्तव में पौंडरक का ध्यान विष्णु के रूप पर केंद्रित था, किंतु वो अपने आप को विष्णु समझता था, जो कि अपराध था, किंतु कृष्ण द्वारा बध हो जाने पर वो अपराध भी जाता रहा। इस तरह उसे सारूप में मुक्ति प्राप्त हुई और उसे भगवान के ही समान रूप प्राप्त हो गया। अब काशीराज का क्या हाल हुआ? राजमहल के द्वार पर वो सिर जो गिरा था, कुंडल से विभूषित सिर को देखकर वहां पर से सारे लोग चकित थे। उनमें से कुछ ने पूछा ये क्या है, दूसरों ने कहा ये सिर है, तो फिर दूसरे पूछते ये किसका सिर है, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं उस सिर को देख करके, ये क्या हो गया, ये क्या है, ये क्या है। सिरा पतित मालोके राजद्वारे सकुंडलम किमिदं कस्य वा वक्त्रम इति संशिशिरे जनम। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद की टीका, जब काशीराज का सिर नगर द्वार के भीतर आकर गिरा तो लोग वहां एकत्र हो गए और उस अद्भुत वस्तु को देखकर चकित रह गए। जब उन्होंने देखा कि इसमें कुंडल भी हैं, तो वे समझ गए कि ये किसी का सिर है। वे अनुमान लगाने लगे कि किसका सिर है। कुंडलों से ही सिर की पहचान होती कि सिर है। धूल में सन गया था ना, तो पता नहीं चल रहा था, कुंडल से पता चल रहा है कि सिर है ये। अब किसका सिर है? कुछ लोगों ने सोचा ये कृष्ण का सिर है। हमारे महाराज ने कहा था कि कृष्ण का सिर काट करके लाएंगे, कृष्ण का सिर है, क्योंकि श्री कृष्ण काशीराज के शत्रु थे और उन्होंने अंदाज लगाया कि काशीराज ने उनका सिर नगर में इसलिए फेंका है कि लोग शत्रु के वध से प्रसन्न हो सके, किंतु अंत में ये पता चला कि वो कृष्ण का सिर नहीं था बल्कि स्वयं काशीराज का सिर था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, जब उन लोगों ने पहचाना कि उनके राजा काशीपति का सिर है, तो उसकी रानियां, पुत्र और अन्य संबंधी और नगर के सारे निवासी हाय हम मारे गए, हाय नाथ कहकर रोने लगे। राज्ञा काशीपतेर ज्ञात्वा महिष्या पुत्र बांधवा पौरा सह हता राजन नाथ नाथे दी प्रारुदन। तो जब राजा का पुत्र सुदक्षिण अपने पिता का दाह संस्कार कर चुका, अब यहां तो ये घटना समाप्त हो गई, भगवान द्वारका में लौट गए, उसने अपने पिता का दाह संस्कार किया, फिर अपने मन में निश्चय किया, देखो ये असुर है, अभी भी जो है ना आसुर भाव नहीं छोड़ रहा है, अपने मन में निश्चय किया मैं अपने पिता की हत्याए का वध करके उनकी मृत्यु का बदला लूंगा। इस तरह सुदक्षिण अपने पुरोहितों सहित बहुत ही लगन से शंकर जी की पूजा करने लगा। शंकर जी क्या बचाएंगे उसको। सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्था विधिं पते निहते पितृहंतारं यास्याम्य पचितिं पितुः इत्यात्मानाभिसंधाय सोपाध्यायो महेश्वरं दक्षिणोर्चयामास परमेण समाधिनाम। तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी की टीका है। काशीराज के स्वामी विश्वनाथ शिव जी हैं। विश्वनाथ जी का मंदिर अभी भी काशी में है और प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री उस मंदिर में एकत्र होते हैं। अच्छा, तो पुरोहितों की सहायता से उसने शंकर जी की पूजा की तो शंकर जी प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। पूजा से संतुष्ट होकर शक्तिशाली शिव जी उस स्थल पर प्रकट हुए और वर मांगने को कहा कि क्या इच्छा है तुम्हारी, बोलो। राजकुमार ने वर मांगा, क्या अपने पिता के वध करने वाले की हत्या करने का साधन बताओ, ये वरदान मांगा।
प्रीतो विमुक्ते भगवान तस्मै वरम मदाद विभुः पितृहंत्रे वधोपायम सवव्रे वरमीप्सितम्।
अब शिव जी जानते हैं कि पिता की हत्यारे कौन है, भगवान कृष्ण है, है ना। तो उसने उपाय मांगा था तो उपाय उन्होंने बता दिया, लेकिन ऐसी शर्त रख दी जिसमें कि वो सफल होगा ही नहीं, है ना। तो शिव जी ने क्या कहा, शिव जी ने कहा कि देखो, दक्षिण अग्नि की तुम सेवा करो ब्राह्मणों के अनुष्ठान के अनुसार, दक्षिण अग्नि की सेवा करो तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन वो दक्षिण अग्नि किसको मारेगा, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध आचरण करे, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध आचरण करता है उसका वध कर देगा। तो क्या हुआ, बहाना मिल गया शंकर जी को। तो भगवान कृष्ण तो ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मणों के द्वारा पूजित हैं और ब्राह्मणों की पूजा भी करते हैं, है ना। तो शंकर जी ने जो ये बात बताई उसने ध्यान नहीं दिया इस बात पर कि जो व्यक्ति ब्राह्मणों का भक्त नहीं है उसको मार देगा दक्षिणाग्नि। इस प्रकार से कहा कि उसने ध्यान नहीं दिया, तो शंकर जी ने कपट किया। आगे चल करके शिकायत आएगी तो शंकर जी कहते हैं हमने तो पहले से कह दिया था कि भाई वो दक्षिणाग्नि उसको मारेगा जो ब्राह्मणों की पूजा नहीं करता है, है ना, तो तुमने फिर क्यों किया, सीधी बात है। इस प्रकार सुदक्षिण ने अनुष्ठान व्रत का दृढ़ता से पालन किया और कृष्ण के विरुद्ध अभिचार कर दिया। इसको अभिचार बोलते हैं। दक्षिणाग्निम परिचर ब्राह्मण समम ऋत्विजम अभिचार विधान सचाग्नि प्रमथैर्वृतः साधयिष्यति संकल्पम अब्रह्मण्ये प्रयोजिता इत्यादिष्ट तथा चक्रे कृष्णायाभिचरण व्रती। तात्पर्य में लिखा है, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि शक्तिशाली दक्षिणाग्नि को केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है जो ब्राह्मणों के प्रतिकूल हो, किंतु कृष्ण तो ब्राह्मणों के सर्वथा अनुकूल हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं। शिव जी जानते थे कि स्वयं मर जाएगा, देखा तो शंकर जी का जो भक्त है वो स्वयं ही शंकर जी स्वयं ही उसको नष्ट कर रहे हैं कपट पूर्वक। देखा तो जो व्यक्ति भगवान के विरुद्ध है और देवताओं की पूजा करता है तो देवता रक्षा नहीं करते, वो भी शत्रु बन जाते हैं उसके। तो शंकर जी की पूजा कर रहा है लेकिन शंकर जी खुद उसके शत्रु हैं और उसको इस प्रकार का उपाय बताया कि खुद ही वो मारा जाए इस प्रकार से। अब यज्ञ कुंड से क्या हुआ, भयानक अग्नि पुरुष निकला, मतलब पूरा शरीर अग्नि का बना हुआ, प्रज्वलित अग्नि का बना हुआ, नंगा पुरुष है और दाढ़ी चोटी भी कैसी पिघले तांबे जैसी, आंखों से जलते हुए गर्म अंगारे निकल रहे हैं, बड़ा भयानक पुरुष। अपने मुंह के कोनों को अपनी जीभ से चाटता हुआ असुर जलता हुआ त्रिशूल हिला रहा था मारने के लिए। तथोग्नि रुत्थितः कुंडान मूर्तिमान अति भीषण तत् ताम्र शिखा स्मश्रुम रंगारोंगारि लोचन दष्टोग्र भ्रुकुटी दंड कठोरास्यासुजीवया आलिहं त्रिकवणी नग्नो विधुन्वन् त्रिशिखं ज्वल। इसको अभिचार कहते हैं, अभिचार। तमोगुणी तमोगुणी तपस्या भी भगवान ने बताया है, परस्वसाधनार्थम व तत्ताम समुदायर्थम। किसी दूसरे का विनाश करने के लिए कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो तामसी तपस्या है ये। तो अब वो जो है जो वो अग्नि पुरुष है वो ताड़ वृक्ष जैसी लंबी टांगों से धरती को हिलाता हुआ द्वारका की ओर भागा। अपने साथ भूतों की सेना लेकर के बहुत तेजी से गया। कहां से द्वारका गया? कहां पर? काशी से द्वारका की ओर भागा। और सभी दिशाओं को जलाता हुआ द्वारका की ओर भागा। पद्भ्याम ताले प्रमाणाभ्याम कंपयन नवनीतलम सोभिधावन धृतो भूतैर द्वारकाम प्रदहन दिशा। अभिचार के अनुष्ठान से उत्पन्न उस अग्नि पुरुष को निकट आते देखकर द्वारका के सारे निवासी अत्यंत भयभीत हो उठे, जैसे दावाग्नि से पशु भयभीत हो उठते हैं। जब जंगल में आग लगती है तो पशु भागते हैं इधर उधर, उनके पास कोई उपाय नहीं होता है ना भागने की सिवा। द्वारका वासी सब भाग रहे हैं। तमाभिचार दहनम आयांतम द्वारकौकसः विलोक्य तत्र सुहु सर्वे वन दाहे मृगा यथा। अभी भय से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए द्वारकावासी। किंग कर्तव्य मतलब क्या करना चाहिए, इसमें विमूढ़ हो गए, भ्रमित हो गए। और राज दरबार में चौसर खेल रहे भगवान के पास रोते हुए बोले, इमरजेंसी भगवान के पास तुरंत आए। हे तीनों लोगों के स्वामी, नगर को जलाने वाली इस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अक्षय सभायाम क्रीडंतम भगवंतम भयातुराम त्राही त्राही त्रिलोके सैम वहने प्रदेहता पुरम। जब कृष्ण ने लोगों की व्याकुलता सुनी और देखा कि उनके अपने लोग भी विक्षुब्ध हैं तो सर्वश्रेष्ठ शरणदाता मात्र हंसे और उनसे कहा, डरो मत, तुम मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है रक्षा करने के लिए। कि जैसे उन्होंने सूचना दी तो भगवान चौंक पड़ते, अरे क्या हुआ, अच्छा ऐसा करें वो करें, ऐसा कुछ नहीं। भगवान चौंके भी नहीं, भगवान को कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। भगवान जो है हंसे और बोले कि मैं रक्षा करूंगा। श्रुत्वा तज्जन व्यग्लव्यम दृष्ट्वा स्वानाम च साध्वसम शरण्यः संप्रहस्याः मा भैष्यत्य वितास्म्यहम्। और भगवान सब समझ गए क्या कि शिव जी द्वारा यज्ञ अग्नि से उत्पन्न किया गया अग्नि पुरुष है। इस असुर को पराजित करने के लिए कृष्ण ने अपने साथ में प्रतीक्षा कर रहे सुदर्शन चक्र को भेज दिया। ऐसा चक्र है भगवान का, भगवान का आदेश मिला, क्योंकि भगवान अपने हाथों से चौसर खेल रहे थे तो हाथ भगवान के खाली नहीं थे, तो भगवान ने खाली आदेश दे दिया। तो भगवान का जो ना प्रत्येक अंग का कार्य करता है, तो भगवान की जो वाणी है वो भी हाथ का काम करती है। तो भगवान ने वाणी से ही बोल दिया चक्र को कि जाओ उसको नष्ट करो, तो चक्र चल पड़ा, है ना। भगवान को हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं है। तो चक्र को भेज दिया। सर्वस्यांतर बही साक्षी कृत्याम माहेश्वरी विभो विज्ञाय तन विघातार्थम पार्श्वस्थम चक्रमादिशन। तात्पर्य लिखा है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि भगवान कृष्ण राजा के रूप में द्यूत क्रीड़ा में मग्न थे और अग्नि पुरुष के आक्रमण जैसे नगण्य कार्य से विचलित नहीं होना चाहते थे, अपने आनंद को भग्न नहीं करना चाहते थे कि भाई ये द्वारका में संकट आ गया है तो ये खेल छोड़ दिया जाए। भगवान को खेलना ज्यादा पसंद था, ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो भगवान का खेल को क्यों छोड़ा जाए है? अतः उन्होंने अपने चक्र को भेज दिया कि डू द नीडफुल, चक्र को कहा आवश्यक कार्यवाही करो, तो चक्र को आदेश दे दिया प्लीज डू द नीडफुल, आवश्यक कार्य करो। फिर भगवान मुकुंद का वो सुदर्शन चक्र करोड़ों सूर्यों की तरह प्रज्वलित हो उठा, उसका तेज ब्रह्मांड की प्रलय अग्नि के सदृश प्रज्वलित था और अपनी अग्नि से आकाश सारी दिशाओं स्वर्ग और पृथ्वी और उस अग्नि पुरुष को भी पीड़ा देने लगा। एक अग्नि दूसरी अग्नि को भस्म कर रही है। तत्सूर्य कोटि प्रतिमम सुदर्शनम जाज्वल्यमानम प्रलयानलय प्रभम सतेज साखम ककुभोत रोदसीम चक्रम मुकुंदास्त्र मथाग्नि मार्दयन। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे राजन, भगवान कृष्ण के अस्त्र की शक्ति से विचलित वो अग्नि पुरुष अपना मुंह मोड़कर चला गया। तब हिंसा के लिए उत्पन्न किया गया वो असुर वाराणसी लौट आया, क्योंकि वो अभिचार ऐसा होता है कि अगर उधर नहीं तो इधर, कहीं ना कहीं तो विनाश करेगा। तमोगुणी विद्या ये होती है, अगर उधर नहीं हुआ तो इधर वो लौट करके आएगा तो उसको मारेगा, है ना। तो वहां द्वारका में तो अब जो है ना उसकी शक्ति नहीं चली, तो वो लौट करके आया तो क्या किया उसने, उसने नगर को घेर लिया, असुर अग्नि पुरुष ने घेर लिया और सुदक्षिण और पुरोहितों को जलाकर भस्म कर दिया। तो जिसने भेजा है उसको भस्म कर दिया, उसके पुरोहित भी सब मारे गए। कृत्यान लहा प्रतिहता सरथांग पाणी अस्त्रोजसा नपे भग्न मुखो निवृत्ता वाराणसी परिसमेत सुदक्षिणम तम सर्त्युंजनम समदहन सुकृतो विचारः। श्रील प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है, द्वारका में आग लगाने में असमर्थ होकर वो अग्नि पुरुष काशीराज की राजधानी वाराणसी लौट गया। उसके वापस होने से मंत्रों के आदेश में सहायक सारे पुरोहित अपने स्वामी सुदक्षिण समेत उस तेज से जलकर भस्म हो गए। तंत्र में निर्देशित मंत्रों की विधि के अनुसार यदि मंत्र शत्रु का वध नहीं कर पाता तो अपने मूल सृष्टा का ही वध कर देता है, क्योंकि इसके लिए किसी न किसी का वध करना आवश्यक है। सुदक्षिण सृष्टा था और पुरोहित उसके सहायक थे, अतएव सभी जलाकर भस्म कर दिए गए। असुरों की यही रीति है, असुरगण ईश्वर को मारने के लिए कोई चीज उत्पन्न करते हैं किंतु वे उसी अस्त्र से स्वयं मारे जाते हैं। इसी प्रकार की घटना चैतन्य चरितामृत में आती है। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में थे तो उनके साथ में काला कृष्णदास था, तो भट्टित्री कोई जो ना संप्रदाय है जो कि बड़े पाखंडी हैं, वो जो है व्यभिचार भी करते हैं स्त्रियों के साथ में और जो है ना कुछ गलत मतलब अपना वो प्रचार करते हैं। तो काला कृष्णदास को जो ना स्त्री का प्रलोभन देकर के उन्होंने फंसा लिया, अपने पक्ष में ले लिया। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास आए तो बड़ी सभ्यता से भगवान ने बात की उनसे। भगवान ने कहा कि देखो भाई, मैं अकेला सन्यासी हूँ, मेरे पास एक ही आदमी था और तुम लोग तो बहुत से लोग हो, तुमने मेरा वो आदमी भी ले लिया। भगवान ने तो इस तरह से एक मतलब ऐसे समझाया कि भाई कुछ तो समझ में आया इनको कि भाई ये क्या कर रहे हैं गलत, हालांकि कितने गलत कर रहे हैं काम तो वो समझेंगे थोड़ी, लेकिन कम से कम इतनी बात तो समझो। भगवान ने कहा कि मैं अकेला सन्यासी हूँ और मेरे साथ एक आदमी था और तुम्हारे साथ तो इतने लोग हैं, तो अभी तुमने मेरा वो आदमी भी ले लिया, तो वो लोग तो गलत थे, तो वो थोड़ी समझते थे कि ये भगवान है, हैं? तो वो जो ना गुस्से से अपने औजार लेकर के आए मारने को, भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने हाथ में फरसे हैं त्रिशूल है, खड्ग है, वो लेकर के आए भगवान को मारने के लिए। उस समय हुआ क्या, उनके हाथ में जो हथियार थे ना वो उनके ही सिर में पड़ने लगे, उनके सिर फटने लगे, वो भागे। तो ये सिद्धांत हमेशा लागू होता है, भगवान के लिए कोई व्यक्ति अगर उल्टा काम करे तो उसके साथ वो ही होता है, वैसे ही होता है। तो बिल्कुल ठीक वैसे ही काम हुआ, काशीराज ने जो है भगवान का सिर काट करके काशी में लाना चाहा था, उसका सिर ही कट करके काशी में आ गया। सुदक्षिण है, सुदक्षिण वो भगवान की द्वारकापुरी जलाना चाहता था, और भगवान को जलाना चाहता था तो खुद जल गया, और अभी आगे जल करके उसकी नगरी भी जल जाएगी। तो ये हुआ। आगे भगवान विष्णु का चक्र उस असुर का पीछा करते हुए वाराणसी के भीतर घुसा और फिर नगर को भस्म करने लगा, जिसमें नगर के सभा भवन, अट्टालिकाओं से युक्त बड़े बड़े महल थे, तमाम बाजार थे, नगर द्वार थे, भंडार, खजाने, हाथीशाला, घुड़शाला, रथशाला, अन्नों के गोदाम, सब धाएं धाएं कर करके सब जला, चक्र ने जला डाला। चक्रम च विष्णु तदनु प्रविष्टम वाराणसी सट समालयापण सगोपुराटालक कोष्ठ संकुलाम सकोश हस्तस्वरथान शालिनी। संपूर्ण वाराणसी नगरी को जलाने के बाद भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बिना प्रयास के कर्म करने वाले श्री कृष्ण के पास लौटाया। दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विष्णोश्चक्रं सुदर्शनं भूया पार्श्वमपातिष्ठन् कृष्णस्याक्लिष्टे कर्मणः। हाँ, इसमें क्या कहा गया है, भूया पार्श्वमपातिष्ठत्, फिर से सुदर्शन चक्र भगवान के पार्श्व यानी बगल में आ गया, साइड में। कृष्णस्य अक्लिष्ट कर्मणा, अक्लिष्ट कर्मणा मतलब बिना कष्ट के कृष्ण के सब कर्म होते हैं, बिना कष्ट के। जो भी प्राणी भगवान उत्तम श्लोक की इस वीरतापूर्ण लीला को सुनाता है या केवल इसे ध्यान पूर्वक सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, ये कथा का फल। यैनं श्रावयेन मर्त्यं उत्तम श्लोक विक्रमं समाहितो वा शृणुयात् सर्व पापे प्रमोच्यते। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत पौंड्रक छद्म वासुदेव शीर्षक 66वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार इस अध्याय में 43 श्लोक हमने पूरे पढ़े। अब कोई प्रश्न है या कोई समीक्षा? धन्यवाद। तो धनंजय कृष्ण प्रभु कह रहे हैं कि इस तरह की चर्चा पहले भी हुई थी कि जो भगवान के बारे में जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, तो वैसा उनका होता है। जो भक्त भगवान की सुरक्षा करना चाहते हैं, ठंड से सुरक्षा करना चाहते हैं, है ना, तो उनकी ठंड से सुरक्षा होती है। इस प्रकार से जो है ना, भगवान भी गीता में कहते हैं ये था माम प्रपद्यंते तांत भजन में हम। इसका मतलब ये है कि जो शत्रु भाव से भगवान का स्मरण करते हैं तो फिर वो जो है ना शत्रु बनते हैं, भगवान के शत्रु बनते हैं। जो भगवान को मित्र बनाना चाहता है भगवान उसके मित्र बनते हैं, है ना। जो भगवान का नुकसान करना चाहता है उसका नुकसान होता है, जो भगवान को फायदा पहुंचाना चाहता है उसका फायदा होता है। तो सब कुछ जो है ना वैसे ही होता है जैसे कोई व्यक्ति भगवान के साथ करता है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि असली वस्तु को अगर आप सजाते हैं तो उसका प्रतिमा अपने आप सज जाता है, है ना। और असली वस्तु में अगर आप कुछ चोट पहुंचाते हैं तो उसकी प्रतिमा में भी चोट पहुंचती है, है ना। तो हम लोग जो है भगवान के इस प्रकार प्रतिबिंब के समान हैं। और कोई प्रश्न? हाँ, इनका प्रश्न है कि सुदर्शन चक्र ने जैसे काशी के बाजार हैं और अन्नों के गोदाम हैं, भंडार हैं, वो सब जला दिए, तो सुदक्षिण का केवल दोष था, तो फिर पूरी काशीपुरी का जो है ना जो नुकसान हुआ इसके बारे में कैसे समझें? हाँ, इसके कई उत्तर हैं। एक उत्तर तो यह है कि एक व्यक्ति के कारण जो है पूरा जो नगर है वो दोषी हो जाता है, एक व्यक्ति के दोष के कारण। है ना। राजा बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वो प्रजा के जो पाप हैं वो उनका हिस्सा लेता है, है? और राजा के भी पापों का जो हिस्सा है वो प्रजा लेती है, है ना। तो इसलिए प्रजा को भी चाहिए कि वो राजा का त्याग कर दे, ऐसे राजा का त्याग करें, है ना। तो ये जरूरी है कि अगर वो राजा फिर भी मानती है, राजा का सम्मान करती है, जैसे कंस राजा था, है ना, तो बहुत से मथुरावासी छोड़ के चले गए, है ना, और जो रहते भी थे तो अंदर से जो है ना वो कंस का साथ नहीं दे रहे थे, ऊपर से साथ दे रहे थे, कुछ मजबूरी थी भय के कारण, तो उस प्रकार से दोष नहीं लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर और बाहर हर प्रकार से साथ देता है राजा का, हा? प्रजा साथ देती है, तो वो भी उसके कर्म में भागीदार होती है, और राजा साथ देता है प्रजा का, हा? तो उसके कर्म का हिस्सा वो भी लेती है। तो ये नियम है कर्म का। और फिर दूसरा उत्तर ये भी है कि अगर कुछ ऐसा नुकसान हुआ है तो जो लोग थे वहां उनके पिछले जन्म के भी कुछ ऐसे कर्म थे कि ऐसा होना था, तो इसमें कई कारण इकट्ठे भी कभी कभी होते हैं, कोई घटना अगर घटती है तो। हाँ, तो धनंजय कृष्ण प्रभु कह रहे हैं भगवान की कोई रक्षा करे या भगवान के भक्तों की रक्षा करे, या कोई विनाश करना चाहता है भगवान का या भगवान के भक्तों का, तो उसी प्रकार का परिणाम उसके लिए होता है। तो एक उदाहरण अमरीश महाराज का, दुर्वासा मुनि ने अमरीश महाराज को नष्ट करना चाहा, है ना, जलाना चाहा, कृत्य उत्पन्न की जलती हुई, वही अग्नि पुरुष था, वो भी दुर्वासा मुनि ने पैदा किया था। तो अमरीश महाराज को जलाने के लिए वो भगवान का चक्र जो है ना दुर्वासा मुनि को जला रहा था, वैसे जलन अनुभव कर रहे थे, चक्र काट नहीं रहा था, जला रहा था, है ना। और दूसरा उदाहरण, हाँ, तो दूसरा उदाहरण है, तो जो डाकू लोग थे तो काली की पूजा में जल भरत की बलि देना चाहते थे, सिर काटना चाहते थे, तो उनके ही सिर कटे, सबके सिर कटे, है ना। तो ये भी उदाहरण बिल्कुल सही है। और उदाहरण, हाँ, और तीसरा उदाहरण जीव गोस्वामी ने दिया है कि वो घटना है, है ना, शास्त्र में घटना है कि एक शिव जी का जो भक्त था तो वो किसी विष्णु भक्त को विवश कर रहा था कि शिव जी की पूजा करे, क्योंकि वो बीमार था, तो शिवलिंग में जो है ना उस विष्णु भक्त ने नरसिंह भगवान की भावना करके उसने पूजा की, तो शिव जी तो नरसिंह भगवान का जब मंत्र उच्चारण कर रहा था तो वो जो है ना समझ गया कि ये शिव जी की पूजा नहीं कर रहा है, तो वो हाथ में तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हो गया, तो शिवलिंग से ही नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, शिवलिंग को फाड़ करके, है ना, और उसका वध कर दिया, है ना। तो जिस प्रकार से वो मारना चाहता था उस प्रकार से वो मारा गया, है ना। और कोई प्रश्न? उनका प्रश्न है कि दीक्षित भक्तों में और सामान्य भक्तों में क्या अंतर है, जो सामान्य भक्त है उनको भी भगवत प्राप्ति होती है। हाँ, नियम तो यही है, अंत काले चमामे स्मरण मुक्त्वा करे वरम, अंतकाल में जो भी मेरा स्मरण करे, भगवान का स्मरण करे, तो भगवान की प्राप्ति करेगा, नियम तो यही है। बाकी जो दीक्षा होती है वो सहायता करती है, दीक्षा सहायक है, है ना। क्यों? दीक्षा का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर एक जो है दबाव पैदा हो गया है कि आप नियमों का पालन करोगे जीवन भर। दीक्षा का मतलब ये है कि आपने मतलब ये आप इस परिवार से जुड़ गए हैं जिस परिवार के लोग जो है ना विशेष नियमों का पालन करते हैं। जैसे कि लड़की जब विवाहिता हो जाती है तो उसके ऊपर और ज्यादा दबाव रहता है कि भाई वो किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध नहीं कर सकती है, है ना। तो विवाह जो संस्कार है वो इसीलिए होता है कि चेतना पर जो है ना प्रभाव डाले कि उसको कुछ विशेष नियमों पर चलना है, कुछ विशेष जो है उसके लिए कानून है, वो उसको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, है ना। तो एक बंधन होता है ये, तो दीक्षा भी एक बंधन है, है? कि आप कुछ नियम से और बंध गए तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अग्नि के सामने आपने जो है वचन दिया है कि आप 16 माला जाप करोगे, 4 नियमों का पालन करोगे, है ना, लेकिन इसके आगे फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप इसमें भक्ति को और आगे बढ़ाओ। जैसे दीक्षा के समय मान लीजिए कि आपको भक्ति रत्ता का बीज प्राप्त हो गया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आप नष्ट ना करो और उसको आप सिंचन करो। तो श्रवण कीर्तन के जल से आपको सिंचन करना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर दीक्षा के बाद भी अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ये बीज नष्ट भी हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए बड़ी सावधानी से हमें नियमों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के हरे कृष्णा।